श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 25। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। तो इसमें भगवान बताएंगे किस प्रकार से लोग परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं और उसके लिए अलग अलग विधि को अपनाते हैं। इसके संबंध में हम श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका को पहले देखते हैं, फिर प्रभुपाद जी की टीका को देखते हैं। तो वो कहते हैं कि परमात्मा को कुछ लोग देखते हैं ध्यान के द्वारा। यहाँ पे शब्द है ध्यानेना, तृतीय विभक्ति है। ध्यानेना का अर्थ है ध्यान के द्वारा भगवान को देखते हैं। कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग, यहाँ पे शब्द है सांख्येना के द्वारा सूचित हो रहा है। कुछ लोग अष्टांग योग के द्वारा देखते हैं, वो शब्द है योगेन के द्वारा दूसरी लाइन में, और निष्काम कर्म के योग के द्वारा देखते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार लोग अपने अपने तरीकों को, साधन को स्वीकार करके भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। यहां पे वो बोल रहे हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण कि कुछ लोग शुद्ध चेतना के द्वारा भगवान को देखते हैं। पश्यन्ति शब्द आप देख सकते हो पहली लाइन में है, दूसरा शब्द है, और आत्मानम शब्द है, ये भगवान को दिखाता है, परमात्मा को दिखाता है। और वो कहां पे हैं? जो मन में रहते हैं, आत्मनि। और उसको देखने का तरीका क्या है? डायरेक्ट भगवान के द्वारा, डायरेक्ट आत्मा के द्वारा देखते हैं। आत्मा के द्वारा मतलब अपने मन के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं, शुद्ध चेतना के द्वारा डायरेक्ट भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं आत्मना का अर्थ है स्वयं, बाई सेल्फ, यानी कि खुद मन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा, ध्यान के द्वारा भगवान को देखते हैं। और इसमें ज्ञान जो है वो गौण साधन होता है, मुख्य साधन नहीं होता है। ध्यान जो है वो मुख्य साधन है। और दूसरे लोग कुछ हैं जो लोग सांख्य के द्वारा भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि ज्ञान प्रमुख होता है, और सांख्य जो है वो गौण साधन होता है। और उसके बाद कुछ लोग अष्टांग योग के द्वारा भगवान को देखना चाहते हैं, जिसमें कि ज्ञान सेकेंडरी एलिमेंट होता है। और कुछ लोग निष्काम कर्म के द्वारा भगवान को देखना चाहते हैं, जिसमें ज्ञान और ध्यान निहित रहता है। तो ये उनकी कुछ टीका है, शायद समझ में नहीं आ रही होगी, उसको हम तात्पर्य जी को, प्रभुपाद जी को तात्पर्य को देखेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे। आप कृपया तात्पर्य को पढ़िएगा, पहले अनुवाद पढ़िए।
कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं।
तो आप एक चीज देख लीजिए कि अलग अलग साधन स्वीकार करने का मुख्य कारण ये है कि लोगों के अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग रुचियां हैं। तात्पर्य देखिए,
भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं, जो लोग नास्तिक, आज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं।
क्यों आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं? क्योंकि हमने सीखा था 13 पॉइंट पिछले श्लोक में 13 में कि जीव जो है वो अनादि है, यानी कि शाश्वत है, और मत पर है, अर्थात भगवान का दास है। तो जो मायावादी लोग हैं ये इस बात को स्वीकार नहीं करते, जीव की शाश्वत दासत्व को भगवान के प्रति स्वीकार नहीं करते हैं। तो मुख्य धारणा जो है जीव की भगवान के संबंध में, वही वो गलती खा रहे हैं, इस कारण से वो लोग अज्ञेयवादी हैं। यस, नास्तिक भी है, भगवान में विश्वास नहीं करते वो।
किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्म योगी कहलाते हैं।
एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इनको आस्तिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये तीनों जो पद्धतियां हैं वो योग में वर्णित हैं, योग शास्त्रों में, भक्ति के शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से वेदों के द्वारा बातें बताई गई हैं, और उसका वो अपने अपने अधिकार के अनुसार अनुशीलन करते हैं, इसलिए उनको आस्तिक बोला जा रहा है, वेदों में इनकी विश्वास है। यस,
जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अजेयवादियों में भी में की जाती है।
एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्रछन्नम बौद्धम उच्चते, मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्चते। मायावादियों के भी शास्त्र होते हैं, लेकिन उसमें शिवजी बोलते हैं कि कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और असत शास्त्र का प्रवर्तन करूंगा। अब असत शास्त्र क्या है ये? प्रछन्नम बौद्धम उच्चते, बढ़िया से ढका हुआ बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म में भगवान को नहीं माना जाता। लेकिन मायावादी कहते हैं भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवान निराकार है। तो ये कहना कि भगवान नहीं है और ये कहना कि भगवान निराकार है, वो नाक को सीधे ना पकड़ के घुमा करके पकड़ने वाली बात है। तो दोनों ही तरह से जो लोग ये बातें बोलते हैं कि भगवान निराकार है, या फिर कोई बोले कि भगवान नहीं है जैसा कि बौद्ध धर्म में बोला जाता है, तो दोनों ही लोग नास्तिक हैं, क्योंकि वेदों की बात को नहीं मान रहे हैं। ये ऊपर ऊपर से वेदों की बात को मानते हुए लगते हैं, जिसे कहते हैं वेद मुख मानी, मुख में वेदों को मानते हैं, लेकिन वेदों का जो सिद्धांत है कि भगवान कृष्ण भगवान है, उनको स्वीकार नहीं करते हैं। इस कारण से इन लोगों की गणना नास्तिकों में की गई है, अद्वैतवादियों की। यस, भले ही वो बाह्य दृष्टि से वेदांत को स्वीकार करते हैं, फिर भी उनको नास्तिक ही कहा गया है, क्योंकि भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते।
दूसरे शब्दों में, केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और वे सर्वव्यापी हैं।
आप इस चीज को, इसका प्रमाण तो भगवान स्वयं देते हैं कि इस ज्ञान को जो 13वें अध्याय में बताया गया है, उसको भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। और हमने इस वक्त समझाया था कि भगवान के भक्त क्यों समझ सकते हैं, क्योंकि 13-13 जिसको समझ में नहीं आया वो तो 13-13 में फंस जाएगा। क्यों फंसेगा? क्योंकि 13-13 क्या बोल रहा है? 13-13 ये बोल रहा है कि मैं भी आपका हूं और मेरी सारी वस्तुएं, सब कुछ जो जगत में है, जो मेरी मुझे लगती हैं, वो भी आपकी हैं और शाश्वत रूप से आपकी हैं, अनादि मत पर। मैं फिर से आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करूंगा, 13-13 में भगवान जीव की स्थिति को समझा रहे हैं। शाश्वत रूप से हम भगवान के दास हैं और भगवान का वैकुंठ जगत है, जहां पर जाकर के हम शाश्वत रूप से उनकी सेवा करेंगे। तो मायावादी लोग वैकुंठ को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए वो नास्तिक ही हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार करते ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। जब बात आती है कि सर्वव्यापी है, तो कहते हैं नहीं, मैं ही सर्वव्यापी हूं। तो अगर आप सर्वव्यापी हैं, तो आपका ज्ञान क्यों ढका हुआ है? तो इस प्रकार की गलत धारणा को प्रवर्तन करने वाला व्यक्ति कभी भी आस्तिक नहीं कहा जाएगा। एक और बात, श्लोक आता है, यस्तु नारायणम देवस ब्रह्मरुद्रादि दैवतम समत्वेन विक्षेपः सपाषंडी भवे ध्रुवम। ईश्वर शास्त्र का श्लोक है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु को ब्रह्मा और शुद्ध रुद्र आदि इत्यादि देवताओं से समान मानता है, वो व्यक्ति पाखंडी है, वो वेदों को नहीं मानता है। तो आप देखेंगे मायावादी लोग इस धारणा का खूब जम के प्रवर्तन करते हैं कि तुम किसी को भी मानो, सब तो बराबर हैं, विष्णु ब्रह्मा शिव सब बराबर हैं और अंततोगत्व ब्रह्म से सब कुछ आए हैं। इस प्रकार की धारणा का प्रवर्तन करने वालों को तो शास्त्र में पहले से ही बोल दिया गया है, ये पद्म पुराण का श्लोक है, कि ऐसे व्यक्ति पाषंडी हैं, भले ही कितना ही वो आस्तिकता का ढोंग करें। तो आप देख सकते हो कि जो भगवान का भक्त है, सच्चा भक्त, जो भगवान के शाश्वत अस्तित्व को स्वीकार करता है और अपने शाश्वत दासत्व को स्वीकार करता है, वही भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने का कह सकते हैं योग्य व्यक्ति है। जैसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट की पहली योग्यता ये है कि 1 और 0 को स्वीकार करें। अगर 0 और 1 को स्वीकार नहीं करता है, 1+1=2 स्वीकार नहीं करता है, तो उसके ये कहना कि मैं कैलकुलस जानता हूं, कोई मतलब नहीं है। तो उच्चतर मैथमेटिक्स सीखने के लिए आवश्यक ये है कि व्यक्ति पहले मूलभूत सिद्धांत को समझ ले। तो मूलभूत सिद्धांत ये है कि जीव भगवान का अंश है और भगवान का शाश्वत अंश है और भगवान का शाश्वत दास है और भगवान भी शाश्वत हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की धारणा में खंडन करता है या अपनी धारणा, अपनी जो अस्तित्व है उसकी धारणा को ठीक नहीं है, तो उसकी बाकी कोई भी आध्यात्मिक विवेचना वो निरर्थक कहलाती है, वो नास्तिक कहलाएगा। आगे पढ़िए।
निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दर्शन दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्व से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं।
अगर आप देखेंगे पांचवें अध्याय को तो भगवान गीता में बोलते हैं, पांचवें अध्याय में सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न विपश्चितः एकम आप्यस्तते सम्यक उभयो फलम, ऐसे करके श्लोक है। तो कह रहे हैं कि सांख्य योग के द्वारा या भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान को ही ढूंढता है। सांख्य योग में पहले व्यक्ति ये ढूंढता है कि इस सृष्टि का स्रोत है कौन, हम तो है नहीं और हम लोग कौन है, तो ये सांख्य योग का विश्लेषण होता है। फिर जो समझते हैं कि इस एनालिसिस के द्वारा कि भाई पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, और अपने अस्तित्व को, आत्मा के अस्तित्व को उससे अलग देखते हैं। और आप देखेंगे कि प्राय हम भी प्रचार में इसका उपयोग करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं कि क्या हम अपनी आंखें हैं, क्या हम अपने कान हैं, तो हम इस विश्लेषण के द्वारा समझ लेते हैं, नहीं मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं अपना मुंह नहीं हूं, मैं जीभ नहीं हूं, मैं त्वचा नहीं हूं, मैं हड्डी नहीं हूं। तो आप देखेंगे नेति नेति, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, तो अपने को इस शरीर से हम अलग करने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम इस प्रकार की विवेचना करते हैं, इस एनालिसिस को करते हैं, तो व्यक्ति समझ पाता है कि वह शरीर से भिन्न है। इस प्रकार के कुछ फिलोसोफर हुए हैं, इवन यूरोप में भी सोक्रेटस नाम के व्यक्ति थे जिनको, जो बिल्कुल कन्विंस थे कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और जब उनको मारने के लिए कुछ लोग आए तो उन्हें बोला कि आप मारने की बात छोड़िए, पहले मुझे पकड़ के दिखाइए। तो पूरी तरह कन्विंस थे, बिल्कुल निर्भय थे, क्योंकि वो, उनको पता था कि वो शरीर से भिन्न है। तो इस प्रकार की श्रद्धा और ज्ञान उनके पास था, लेकिन वो इस ज्ञान से युक्त नहीं थे कि ये आत्मा कहां से आई, इस आत्मा का स्रोत क्या है, या मैं किस पे निर्भर करता हूं, भगवान कौन है। तो जब इस प्रकार का विश्लेषण करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए व्यक्ति ये समझता है कि भगवान कौन है, खोजते खोजते और फिर उनकी शरण में जाता है, तो वो भी भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो ये ज्ञान मार्ग का तरीका है। पढ़िए।
जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं।
एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमने पहली रिकॉर्डिंग में शायद नहीं भेजा था, वो मुझे अभी इसमें दिख रही है। पहली चीज ये कि जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो ये निष्काम कर्म किसके लिए है, कर्मयोग किसके लिए है, जो लोग के कर्म में बहुत रुचि है, जिनको बहुत कर्म करने की इच्छा है, तो इनके लिए आवश्यक है कि वो लोग निष्काम कर्म करें। वो बैठ के जगह ध्यान नहीं लगा सकते, लेकिन जब उस प्रकार से निष्काम भावना से व्यक्ति कर्म करता है, ये समझते हुए कि कृष्ण को समर्पित हो रहा है, या ये ना भी समझे कि कृष्ण को समर्पित हो रहा है लेकिन ये भगवान के लिए है। ये बात गीता में आती है कि अगर ना भी पता हो कि कृष्ण भगवान है लेकिन निष्काम भाव से कर्म करता है, तो धीरे धीरे शुद्ध होकर के वो ये समझने की योग्यता प्राप्त कर लेता है कि कृष्ण भगवान है, और ये समझने की योग्यता है श्रद्धा। तो निष्काम कर्म से प्रगति करते करते धीरे धीरे उसके हृदय में ज्ञान उदित होने लगता है, और निष्काम कर्म इस प्रकार से परमात्मा और आत्मा का दर्शन करा सकता है, आचार्य समझाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं करा सकता। तो परमात्मा का दर्शन करता है, लेकिन जब इस प्रकार से वो और फिर आगे जाकर के वो भक्तों का संग प्राप्त करते हैं श्रद्धा के विकास के, श्रद्धा के क्रमिक विकास के द्वारा, तब फिर वो भगवान को दर्शन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और बात यहाँ पे बड़ी जो इंटरेस्टिंग आ रही है, प्रभुपाद उसको समझा रहे हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मना आत्मनः। बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन इतना शुद्ध है कि भगवान को स्वयं ही अपने हृदय में ढूंढ लें और इस प्रकार से भगवान का दर्शन प्राप्त कर लें। तो केचित का मतलब है कि सारे लोग इस प्रकार के शुद्ध हृदय वाले नहीं होते हैं, इसलिए सभी के लिए मार्ग अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनका हृदय शुद्ध होता है और वो भगवान को इस प्रकार से हृदय में देख पाते हैं, परमात्मा को। आगे पढ़िए।
इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद जी अच्छा कमेंट कर रहे हैं। देखिए, टांग मुड़ने और हाथ मुड़ने से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। शरीर भले स्वस्थ हो जाए और कुछ हद तक मन अगर नियंत्रित हो भी जाए तो भी भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं नवदा भक्ति के पथ को अनुशीलन करने से। तो ये उन लोगों के लिए है जो इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त नहीं होते हैं, जो भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं रख पाते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो अपने मन को, अपने इंद्रियों को शुद्ध करें हठयोग के द्वारा और धीरे धीरे यम नियम का पालन करते हुए आगे भक्ति के पथ पे बढ़े, भक्ति के पथ तक पहुंचने का प्रयास करें। अंततोगत्व भगवान का साक्षात्कार केवल भक्ति के द्वारा होता है। परमात्मा का और आत्मा का साक्षात्कार अन्य पद्धति के द्वारा हो भी जाए, लेकिन भगवत साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार, जो दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति हैं, श्याम सुंदर अचिंत गुणों से युक्त व्यक्ति हैं, वो केवल भक्ति के द्वारा होता है। तो ये श्लोक हमने आज ही सीखा। कोई प्रश्न है?